जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले ओ, 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 ओले ओले ओ।
ओम शांति। आज हमारे बीच में मधुबन के होली स्टार जीतू भाई जी समक्ष हैं, जो अपने जीवन का रूहानी सफ़र हमें विस्तार से अवगत कराएंगे। जीतू भाई की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो चलते फिरते कई भाई बहने देखते भी होंगे। ऑलराउंडर सेवाएं हैं, वैसे तो कहने में टोली डिपार्टमेंट में, लेकिन वहाँ रहते हुए भी बहुत सारी सेवाओं में इनकी सहभागिता होती है। आप यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, समय समय पर कई यूथ विंग के प्रोग्राम होते रहते हैं जगह जगह, तो वहाँ भी ये पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, यूथ के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और यहाँ भी जब मधुबन में होते हैं तो हम देखते हैं बहुत मिलनसार हैं। डिपार्टमेंट में सेवा करते हुए भी अनेक आत्माओं का भाग्य कैसे बने, वहाँ भी इनकी स्थूल और सूक्ष्म रूप से बहुत इनका सहयोग रहता है। बाबा को भोग बनाते हैं बहुत प्यार से, और उस भोग को भगवान स्वीकार करते हैं, बहुत बड़ा भाग्य है। और उस भाग्य में हमको भी कभी कभी शामिल कर लेते हैं, बुला लेते हैं। तो अनेक आत्माओं के लिए भाग्यों को, उनके भाग्यों को और बढ़ाने के लिए, उमंग उत्साह भरने के लिए ऑलराउंडर सेवाएं करते रहते हैं। बहुत स्थान पर एडजस्टेबल भी होते हैं, कई बार छोटे इनसे छोटे भाई बहन होते हैं तो उनकी भी बात को बड़े प्यार से सुनते हैं, उनकी पूरी तवज्जो देते हैं, उनको महत्व देते हैं। और उमंग उत्साह भर के सेवाओं में कैसे चलना है, कैसे उनको आगे बढ़ना है, मधुबन के नियम कायदे उनको भी बड़े प्यार से सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज हम उनके मुख से ही सुनेंगे कि उनका रूहानी सफ़र जो है वो कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसका क्या कारण रहा, कैसे इस रूहानी आर्मी में शामिल हुए, कौन प्रेरणा स्रोत रहा। तो कुछ एक प्रश्न है उनके माध्यम से हम इनके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे, हमारे लिए इनकी क्या प्रेरणाएं हैं। अपना यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं तो यूथ के लिए फ्यूचर क्या प्लानिंग है वो भी हम इनके मुखारविंद से सुनेंगे। तो जीतू भाई जी से पहला प्रश्न है, आप ईश्वरीय ज्ञान में कब आए और कौन सी ऐसी अनुभूति हुई जो आपने संसारी जीवन को छोड़कर ज्ञान मार्ग में चलना सहर्ष स्वीकार कर लिया।
ओम शांति। वैसे तो हर किसी ब्राह्मण आत्मा का जो बाबा का बच्चा बन जाता है, उसका जीवन का सफर अगर देखते हैं तो देखने में तो एकदम सामान्य लगता है, लेकिन अगर हम अपने सफर को शुरू से देखना शुरू करें तो लगता है कि ये जीवन जैसे ईश्वर ने ही बनाया है और ईश्वर ही चला रहा है। एक एक इंसिडेंट, एक एक चीज इतनी पर्टिकुलर होती है और इतना परफेक्ट समय पर एडजस्ट होती है कि वो भगवान ही कर सकता है। तो मेरा अपना सफ़र तो बहुत बचपन से शुरू हुआ। मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूँ कि 3 साल का था उस समय मम्मी पापा को परिचय हुआ बाबा के ज्ञान का, और उस समय से ही एकदम नेचुरली बाबा बाबा बोलना शुरू कर दिया और नेचुरली इस ज्ञान मार्ग में चलना शुरू कर दिया। तो बचपन में जो चीज़ें खास करके इम्प्रेस करती थी, तो एक तो सबसे बड़ी बात जो योग, और वो भी इसलिए इम्प्रेस करता था कि पढ़ाई में उसका बहुत बेनिफिट होता था। और हमारा से हमारा एक छोटे से गांव है महाराष्ट्र में, वहीं जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई हुई, तो वहाँ सारे किसान और टीचर्स वगैरह क्लास में आते थे, इसलिए सवेरे का मुरली क्लास भी सवेरे 4 बजे होता था, 4 से 4:30 मुरली योग, फिर उसके बाद में मुरली। तो उसी से बचपन से ही एक अमृत वेला और इसकी नेचुरल आदत बन गई, जैसे सवेरे उठने के बाद फिर योग करके फिर पढ़ाई करने बैठ जाते थे, तो बहुत इजी होता था लौकिक पढ़ाई भी करना। फिर जैसे जैसे बड़े होते गए तो एक लगा कि नहीं, हम चल तो रहे हैं, मुरली भी सुन रहे हैं, बाबा को याद भी करते हैं, अच्छा लगता है, कंसंट्रेशन होता है, शांति मिलती है, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी क्या होती है और क्यों हम इसमें चल रहे हैं, थोड़ा सा संकल्प चलने लग गए। मम्मी पापा टीचर थे, इसलिए एक रूटीन ऐसे बना हुआ था कि जब भी कुछ हॉलीडे शुरू हो जाएंगे तो जो हम बुक्स लेके आते लाइब्रेरी से, और ख़ास करके मुझे बहुत पसंद थे स्वामी विवेकानंद जी, मेरे जीवन में बहुत मतलब जैसे उनका इम्प्रेशन है। उनका जब मैं उस समय बुक पढ़ा तो एक बुक हाथ में आया, राजयोगा द एक्सपेरिमेंट, उन्होंने राजयोगा के ऊपर बहुत कुछ लिखा है और बहुत क्लियर लिखा है, और जैसे मैं पढ़ रहा था तो साइंस का स्टूडेंट था, तो मैं भी ऐसे जड़ से कोई बोले और विश्वास कर ले इस तरह से तो नहीं था। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो एक उसकी एक पद्धति होती है, उसने जो चीज़ अचीव कर लिया अगर उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कोई भी वो चीज़ अचीव कर सकता है, रिजल्ट सेम आएगा। वैसे ही स्पिरिचुअलिटी है और उसी का नाम राजयोगा है, कि अगर हम वो प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हम भी वो अचीव कर सकते जो योगी आत्माओं ने अचीव किया है। तो वो चीज़ लगी कि नहीं, हमें ये प्रोसेस फॉलो करके देखनी चाहिए कि हमने सुने हैं महात्माएं कैसे होते हैं तो हम क्या वहाँ तक पहुँच सकते। फिर धीरे 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 ज्ञान की समझ आती गई, और खुद को एक भाग्यशाली मानता हूँ कि बचपन से बहुत दीदियों की दादियों की बहुत पालना मिली, जैसे मम्मी पापा हमको सेंटर पर रख के जाते थे, एक एक मास बहनों के पास रहते थे, तो वही सब कुछ स्थूल चीज़ें भी सीखना और अपनी स्पिरिचुअलिटी भी सीखना वहाँ से शुरू किया। एक छोटा सा इंसिडेंट आता था एकदम बचपन का, जैसे हम वहाँ बुरानपुर सेंटर है, जोन सेंटर, सब जोन सेंटर, वहाँ थे दीदी के पास, तो दीदी बहुत छोटे थे ना, समझो 8-7-8 साल का होगा, तो उस समय दीदी ना हमारे बाल वगैरह भी बनाती थी, तो एक दिन दीदी बाल बना रही थी तो बनाते बनाते दीदी मुझे कहती है कि पता है अभी आप इसमें आईने में देख रहे हो अपने आप को, तो बाबा ने भी हमको एक आईना दिया है। तो हम इसे देखने लगे दीदी की तरफ, तो दीदी कहती है योग है ना, योग आईना है, और ज्ञान जो है वो है मेकअप, तो आप रोज जैसे इस आईने में देखते हो वैसे जब योग में बैठते हो तो अपने आप को देखा करो कि कहीं मेरा बिगड़ तो नहीं गया है, चेहरा तो नहीं बिगड़ गया है, मेरी स्थिति तो नहीं बिगड़ गई। बहुत छोटा था लेकिन इस तरह से दीदी ने सिखाया, तो मतलब कहने का अभाव, चलते फिरते ज्ञान की जैसे लाइब्रेरी चारों तरफ थी और ऐसे ही चलते गए, और मधुबन में भी उसी समय आना होता था बच्चों के प्रोग्राम में भी, वहाँ मधुबन में पहली बार, मधुबन में पहली बार मैं 83 में आया, 74 का बर्थ है, 9 साल का था लगभग उस समय, और उस समय का भी बहुत एक अलग एक्सपीरियंस है एक्चुअली। जो दीदी मनमोहिनी थे तो उन्होंने मम्मी से काफ़ी मतलब मम्मी उनसे काफ़ी क्लोज थे, उन्होंने अपने कोर्स का पहला ही चैप्टर मम्मी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, उसके बाद कोर्स शुरू हुआ था। तो जब आए हम लोग 83 में, तो स्टेशन पे अबूरो स्टेशन पे बाय चांस दीदी जा रहे थे बॉम्बे और हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ स्टेशन पे मिलना हुआ तो बहुत छोटा था, तो दीदी ने उंगली पकड़ लिया और बोलती है चल चल तुमने ऐसी घर देखा है, तो हम ऐसे बस देखते रहे। दीदी लेके गए, एसी की डब्बा था ना ट्रेन का, उसमें लेके गए, वहाँ बैठे, तो वहाँ भी बहुत इजीली बैठे। दीदी कहते कि इसको एयर कंडीशन क्यों कहते हैं, हमने बोला दीदी बहुत ठंडा है ना यार इसलिए एयर कंडीशन होगा, बोले नहीं नहीं एयर कंडीशन मतलब इसमें बाहर की गर्म हवा अंदर नहीं आ सकती है, तो हम अपने अंदर सेफ रहते हैं। वैसे ही अपने जीवन में हमेशा जब भी कुछ से ले तो एयर कंडीशन में चले जाओ, तो वो चीज़ भी एकदम दिल में छू गई। फिर यहाँ जब बच्चों के प्रोग्राम में आते थे तो दादियों का भी बहुत प्यार मिला, क्योंकि अच्छे स्टूडेंट थे तो हर साल दादी कुछ ना कुछ गिफ्ट वगैरह करेंगे, सम्मान भी करेंगे कि आए फर्स्ट आया है एजुकेशन में अच्छा है, और वही एक चीज़ प्रेरणा दिया कि नहीं हम जैसे इसमें हैं वैसे उस एजुकेशन में भी या लौकिक में भी हम अपने आप कुछ मतलब अपना बनाए वजूद बनाए। तो इस तरह से बचपन का समय था। यहाँ मधुबन में मुझे याद आता है पहली बार जब बच्चों के प्रोग्राम में आए थे, शायद 85 में 86 में ऐसे कुछ होगा, तो उस समय पहले पहले शुरुआत में वीडियो कैमरा आया था अपने मधुबन में, तो दादी ने हर एक बच्चे का रिकॉर्ड करवाया था कि दोनों लक्ष्य बताओ, एक अपने लौकिक जीवन का लक्ष्य बताओ और अलौकिक जीवन का लक्ष्य बताओ, और केवल लक्ष्य नहीं बताओ तो लक्ष्य को अचीव करने के मतलब वहाँ पहुँचने के लिए आप क्या करोगे वो भी रिकॉर्ड करो। तो उस समय उस आयु में इस तरह से एक गाइडेंस मिला, एक गोल भी डिफाइन हो गए, प्रोसेस भी पता चल गई, तो बहुत ईजी हो गया हर चीज़ का।
तो जीतू भाई साइंस के स्टूडेंट रहे, फिर साइलेंस में चले गए, फिर महात्मा बन गए, फिर मधुबन में पहुंच के। अच्छा, तो आप लौकिक पढ़ाई करते भी लौकिक और अलौकिक का बैलेंस कैसे रखते रहे, और स्कूल में भी वातावरण कई तरह का होता है, तो उस पढ़ाई में रहते हुए आपको संसारी कोई आकर्षण नहीं रहा?
वैसे बाहर की दुनिया ऐसी होती है कि बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती है, खास करके यंग मन को, लेकिन जैसे कहा कि शुरुआत से फाउंडेशन अगर मजबूत होता है तो चीज़ें आती है, बातें आती है, लेकिन उसमें से इजीली हम लोग बाहर आ जाते, पता भी नहीं चलता कि क्या समस्या आने वाली थी या कहाँ से हम निकल के आ गए। वैसे मेरा तो फाउंडेशन बना ही मम्मी पापा के फाउंडेशन के कारण, उनका ज्ञान का फाउंडेशन बहुत मजबूत था। तो जैसे अभी सुशील भाई ने पूछा इसलिए याद आया कि मैं 11th 12th में बाहर पढ़ाई कर रहा था, मैं घर से बाहर हॉस्टल में रह रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें होती है जब हॉस्टल में रहते हैं तो बहुत संगठन होता है, और कई बार ऐसे होता है कि हम दोस्तों के फ्रेंड्स के प्रभाव में आ भी जाते हैं। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, 31st December का समय दिन था, तो सब स्टूडेंट्स पार्टी वगैरह करते हैं, वैसे तो मैं हर धारणा में बहुत अपने आप को सेफ रखता था, धारणा में पक्का रखता था, लेकिन जब पार्टी होती है तो थोड़ा सा उसके साथ मस्ती वगैरह होती है, तो उन्होंने उस समय कुछ शराब और सिगरेट्स वगैरह भी लाए थे अपने खुद के लिए, और उसमें से कई लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि नहीं एक बार ले ले, एक बार ले ले टेस्ट कर। तो इतना करने के बाद है ना थोड़ा सा मन हिल गया, वो सिगरेट है ना वो पैकेट में से एक सिगरेट मैंने निकाल लिया अपने हाथ के लिए, लेकिन उसी समय जैसे मैंने निकाला तो क्या एक्चुअली क्या था, मेरी मम्मी जो थी वो हर हफ्ते मुझे एक इनलैंड लेटर भेजती थी, क्योंकि उसमें फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो इनलैंड लेटर भेजती थी, और लेटर जब लिखेंगे ना तो सब कुछ जैसे बाबा टाइटल देते हैं ना वैसे टाइटल शुरुआत में होंगे कि योगी आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो, ऐसे राजकुमार हो, इस तरह से टाइटल ऊपर रखे थे। अभी नहीं, मेरे साथ वाले जो पार्टनर्स थे तो उसमें से एक बंदे ने वो लेटर पढ़े थे, 2-3 लेटर। तो जैसे उसने मेरे हाथ में वो सिगरेट देखी, तुरंत उसने बोला, अरे तुम्हारे मम्मी ने तो तुमको लिखा था तुम तो पद्मापदम भाग्यशाली धारणा पूर्वक आत्मा हो। अभी उसको पता नहीं धारणा क्या होती है, पद्मापदम भाग्य क्या होता है, उसको पता नहीं, लेकिन उसने मुझे उस समय टोक दिया कि मम्मी ने तो ऐसे लिखा था, मैंने पढ़ा था तुम्हारा लेटर। तो तुरंत बुद्धि में आया कि नहीं, मैं थोड़ा सा रास्ता भटक रहा हूं, तुरंत उसको छोड़ दिया। और उसका प्रभाव एक ऐसे हुआ कि जो हमारा फ्रेंड सर्कल था, कई बार हम सोचते हैं कि इनको हम अगर कंपनी नहीं देंगे तो हम थोड़ा कमजोर साबित होंगे, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद में सारे फ्रेंड सर्कल में एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट बढ़ गया कि नहीं, ये एक विशेष आत्मा है और इसका परिवार भी विशेष है। और पढ़ाई में तो अच्छा था ही, इसलिए सब लोग उस तरह से रिस्पेक्ट तो था, लेकिन इस तरह से भी रिस्पेक्ट बढ़ गया। और इसलिए जैसे कहा, दादी भी बहुत हमेशा ये करती थी जो अच्छे स्टूडेंट्स का, इसलिए दोनों का बैलेंस रखना ना, उस समय से दोनों चीज़ें आती थी। और दूसरा एक चीज़ वहाँ और अच्छी मिलती थी मुझे, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक पे है, तो जब भी हमारी बहनें वगैरह मधुबन से जाएगी तो मधुबन से जाते समय सारा भोजन ले जाएगी, मुझे सब कुछ वहाँ दे के चली जाएगी, तो मधुबन का भोजन भी रेगुलर वहाँ मिलता था। और इस तरह से बहुत हंसी खुशी वहाँ से पढ़ाई भी पूरी हुई।
देखो, कभी कभी हमारी धारणाओं को मजबूत करने के लिए वो आत्माएं भी निमित्त बन जाती हैं जिनको ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। जैसे कहा कि धारणा के लिए, तो जब वो दोस्त था वो भी किसी न किसी रूप में भगवान ने उसको टचिंग कराई तो बचा लिया। तो ये भी हमको एक सीखने की बात मिली कि हम किसी से भी सीख सकते हैं। अभी उस दोस्त का
ओ भाई, आता पता तो वही है वो तो मेरे से काफी सीनियर था, 3 साल सीनियर था
तो अभी ये प्रश्न नेक्स्ट ये है कि आप सेंटर में जाते थे, सेवाएं करते थे, तो कौन कौन सी सेवाएं आपने वहाँ दी और वहाँ कैसे सेवाओं में आप आगे बढ़े, सेवाओं में निर्भर रहने के लिए क्या क्या सीखा, सेंटर में आपका क्या रोल रहा?
वैसे जैसे कहा कि बहुत छोटेपन से ही बहनों के साथ में था, तो हर प्रकार की सेवा में हमेशा अधिकार से बहनें भी कहती थी, और हम लोग भी हमेशा अपने आप को अवेलेबल रखते थे, प्रायोरिटी बाबा के घर की सेवा, उसके बाद सब कुछ। इसलिए सब प्रकार की सेवा करने का एक भाग्य भी मिला, और शायद उसी सेवा का जो परसेंटेज जमा हुआ है उसी से आगे का जीवन चल रहा है। लेकिन बाबा की सेवा का एक चीज मैंने अनुभव किया, चाहे वहाँ चाहे अभी मधुबन में रहते तभी भी, कि बाबा को अगर हमारे से कुछ करवाना होता है तो बाबा चांस देते हैं, लेकिन उस समय अगर हम थोड़ा सा अगर मनमत लगा देते या कुछ भी अपना थोड़ा किंतु परंतु लगा देते तो चांस निकल जाता है, दूसरे किसी को मिल जाता है। सेवा तो होती है, सेवा रुकती नहीं किसी भी चीज़ की। बचपन में हमने देखा कि बहुत चांस भी ऐसे मिले, आज जो मुरली सुन रहे थे, कल की भी, आज भी जो सचिन भाई सुना रहे थे कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के अपने आप को अनुभव कीजिए। तो जब हम छोटे छोटे बच्चे थे और प्रदर्शनी वगैरह लगती थी तो प्रदर्शनी समझाने जाते थे, तो उस समय सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन और सबसे ज़्यादा अच्छा ये कल्प वृक्ष और सृष्टि चक्र लगता था समझाने के लिए। उसके दो कारण होते, एक तो खुद को अच्छा लगता था क्योंकि जो नीचे जड़ पे सारे ब्राह्मण आत्माएं बैठे हैं बाबा के साथ में, तो सोचते थे कि हमारा इसमें तो फोटो है ही नहीं, लेकिन शायद यहाँ पीछे कहीं होगा, वो आगे आ जाएगा फोटो, ऐसे लगता था। और दूसरा, वो जो ज्ञान हम सुनाते थे, तो चाहे कितने बड़े बड़े आ जाते हैं, जो ऑफिसर भी आएंगे या कोई भी आएंगे, उनके पास वो चीज़ है ही नहीं, उनको पता ही नहीं है कि 5,000 साल का कल्प है, उसमें कैसे चलता है, कैसे साइकिल बनती है, किस तरह से इसे, तो वो लगता था कि नहीं, इनको कुछ पता नहीं, हमको सब पता है तो कई बार तो उनको ये भी कहते थे कि ऐसे है, ये जो नीचे देख रहे हैं ना आप जड़ में, तो यहाँ तो हम लोग बैठे हैं, अभी आप लोग कहाँ हैं वो बताओ कौन से पत्ते में आप लोग छिपे हैं, आपका पत्ता ढूंढ लो, ऐसे करके उनको कहते थे। तो इस तरह से अच्छा बहुत एंजॉयमेंट से सेवा भी करते थे। और दूसरा, बाबा मुरली में तो कहते ही थे ना कि जितना आप समझाएंगे, ज्ञान समझाएंगे, उतनी प्रजा बनेगी। तो वो भी एक ताकि नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा बनाएं। तो इसलिए सेवा, लेकिन जैसे कहा कि सेवा में निर्विघ्न रहने के लिए दो चीज़ें अब शुरू से फॉलो किए, जो बाबा मुरली में भी कहते हैं, बालक सो मालिक और मालिक सो बालक। कि अगर कभी कभी कुछ प्लान बनता है तो बहुत अथॉरिटी से, और जितना हमारे पास है उससे भी एक्स्ट्रा 100% से भी ज़्यादा देकर हम अपनी राय देंगे कि ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन जब एक्चुअल सेवा का समय शुरू हो जाता है तो उस समय जो बड़ों ने फाइनल कर दिया उसके आधार से फिर 100% देना, फिर उसमें हमारा बुद्धि नहीं चलाना। वो उस समय भी करते थे, बचपन में भी, अभी जो विंग की सेवाएं करते हैं या कुछ भी सेवाएं करते तो यही प्रोसेस फॉलो करते, तो उससे दुआएं बहुत मिलती है और सफलता बहुत मिलती है। सेंटर पर सब प्रकार की, जैसे प्रदर्शनी वाली तो हुई, लेकिन स्थूल सेवा जो होती सेंटर की, कर्मणा सेवा, कुछ भी है, कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में सब मदद किया। जी जी जी, एक्चुअली हमारा एक प्लस पॉइंट ये था, जैसे शुरू में कहा कि हमारा जो मुरली क्लास था सवेरे था, अमृत वेले ही, और अमृत वेले होने के कारण अमृत वेले उठते थे, योग वगैरह करके पढ़ाई, और फिर उसके बाद में अलग से मुरली पढ़ने भी सेंटर पे चले जाते। लेकिन उसके कारण पूरा दिन हमको मिलता था, बाकी के हमारे जो साथ वाले दोस्त वगैरह थे तो उनके लिए दिन जैसे आधा आधा ही मिलेगा, 8-9 बजे उठेंगे, फिर उसके बाद में तैयार होके वगैरह जाएंगे, तो उनको टाइम कम मिलता था, हमको टाइम बहुत मिलता था। और शाम का समय हम ज़्यादा करके सेंटर की सेवा के लिए देते थे। लोग रात को या शाम को पढ़ाई करते थे, हम लोग सेवा करके भी सो जाएंगे और सवेरे जल्दी उठ के, दोनों भाई, हमारे दोनों भाइयों का यही सिस्टम था कि सवेरे उठ के 3 बजे उठ जाएंगे, फ्रेश वगैरह होके थोड़ा सा योग करेंगे 20 मिनट कम से कम अच्छी तरह से, फिर उसके बाद पढ़ाई लग। तो कई बार जो साथ वाले थे ना वो बोलते थे, यार तुम तो सारा दिन ऐसे लगता है सेंटर पे जाता है, खेलता भी है, सब कुछ करता है, तुमको याद कैसे रहता है। तो वो लोग भी वंडर खाते थे इस तरह से।
तो उसमें कोई आपके मम्मी डैडी का भी डर रहता था आपको कोई? नहीं, अगर ज्ञान योग नहीं करेंगे तो कुछ
नहीं,
बोलेंगे?
डर तो ऐसे कभी नहीं रहा, ज्ञान योग के बारे में तो नहीं रहा। हाँ, कभी कुछ अगर कुछ हो जाता है, गलती हो जाती है, कुछ होता है तो लगता था कि नहीं मम्मी को बुरा लग जाएगा, या उनका मतलब जो सर्कल है, क्योंकि टीचर्स थे तो उनका इम्प्रेशन खराब हो जाएगा हमारे कारण, तो ये थोड़ा सा रहता था, बाकी उनके तरफ से ऐसे डर वगैरह तो कभी रहा नहीं। नहीं, एकदम शुरुआत में जब प्राइमरी स्टडी की 4th स्टैंडर्ड तक, तो उस समय पापा थे उस स्कूल में, थे एक क्लास के टीचर भी थे 4th स्टैंडर्ड के, बाकी मम्मी तो अलग स्कूल में थी। बाकी उस समय स्कॉलरशिप्स वगैरह होते थे तो काफ़ी मतलब पढ़ाई करते थे, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था उस समय। तो यहाँ मधुबन में दादी ने इतना ज़बरदस्त हम इसमें स्टेज पे बुला के सम्मान किया था, तो अभी तक वो जैसे आ जाता, थ्रिल हो जाता है।
आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
वैसे वहाँ BSc किया, वैसे कंप्लीट नहीं किया, लास्ट ईयर में मधुबन आ गया।
तो आप मधुबन में आए BSc की पढ़ाई करने के बाद, तो आपको यहाँ टोली किचन में सेवा मिली, तो आपको संकल्प नहीं आया कि मेरी पढ़ाई का अभी क्या होगा?
शुरुआत जब मैं पढ़ रहा था ना, तो जब 12th में था उसी समय, पता नहीं 12th के फर्स्ट हाफ तक तो बहुत ऐसे इंटेंसिटी थी कि नहीं मुझे परसेंटेज बहुत लाने हैं और फिर इंजीनियर बनना है वगैरह, बहुत कुछ ऐसा था। लेकिन सेकंड हाफ जो शुरू हुआ 12th का, तो उसमें थोड़ा सा विचार चलने लग गए। एक्चुअली उस समय इंटेंसिटी होनी चाहिए, लेकिन उस समय विचार चलने लग गए कि नहीं मैं बनूंगा, परसेंटेज आएंगे, इंजीनियर बनूंगा या जो कुछ भी बनूंगा, लेकिन उसके बाद क्या। आखिर कभी कभी ऐसे विजन भी दिखता था कि ऑफिस में बैठा हूँ और ऑफिस में मेरी नंबर प्लेट नेम प्लेट लगी है और नेम प्लेट के नीचे लिखा हुआ है कुछ इंजीनियर ऐसे। तो मैं सोचता था कि ठीक है ये तो लगेगा ही, लेकिन आखिर क्या, लोग तो मुझे वो डिग्री के नाम से ही पहचानेंगे ना, मुझे तो भूल जाएंगे कि कैसा आदमी है क्या आदमी है, सब कुछ भूल जाएंगे, केवल डिग्री से पहचानेंगे लोग। तो ऐसा क्या हो सकता है जो लोग मुझे, जो मैं जैसा हूँ वैसा लोग पहचाने। तो उसके बाद जब मधुबन में सेवा में आया ट्वेल्थ के बाद, वैसे हर साल आते थे लेकिन ट्वेल्थ के बाद जब आया तो यहाँ ओम शांति भवन में सेवा मिली थी हॉल संभालने की। तो उस समय मैं थोड़ा सा उसी बुद्धि से आया कि यहाँ लोग कैसे रहते हैं मधुबन में। तो मैंने यहाँ पाया कि यहाँ जितने भी है इंक्लूडिंग दादिया, कि जितने भी है उनकी पहचान इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो एक विशेषताएं डेवलप की है और उसके कारण उनकी पहचान बनी है। तो फिर बुद्धि में क्लिक हुआ कि मैं यही चीज तो ढूंढ रहा था कि जो जैसा अपने आप को डेवलप करेगा वैसे उसको पहचाना जाएगा, उसकी वैल्यू के आधार से पहचाना जाएगा, ना कि टैग के आधार से, ना कि डिग्री के आधार से। इसलिए मैंने डिसीजन हुआ कि नहीं मधुबन में रहना चाहिए। वैसे डिसीजन अंदर से नहीं हुआ लेकिन उस समय सोच चली कि ये लाइफ सबसे अच्छी है। फिर 15 दिन के लिए आया था, फिर रामानुसार एक्सटेंड होता गया, एक बार आत्म प्रकाश भाई ने बढ़ाया, एक बार दादी प्रकाशमणि ने कैंसिल कर दिया टिकट, एक बार दादी शांतामणि ने कैंसिल कर दिया, और वो 15 दिन, आज 30 साल हो गए होने पे आए।
तो मधुबन में आप कौन से सन में रहना शुरू किया आपने?
मैं वैसे 92 में सेवा में आया था, समर्पित 93 में हुए।
93 से समर्पित, जी जी। तो यहाँ पर आप विशेष किस चीज़ पर अटेंशन देना शुरू किया, क्योंकि यहाँ भी बेहद का संगठन है तो बहुत सारी बातों का अटेंशन रखना पड़ता है, अपने ऊपर आपने कौन सी धारणाओं पर विशेष अपना फोकस किया ताकि आपका मनोबल मजबूत बना रहे?
जब यहाँ सेवा में रुका था, जब समर्पित होने वाला था, मतलब हुआ नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि समर्पित होगा मैं, लेकिन 7-8 मास कंटिन्यू रहे मधुबन में जो 15 दिन एक्सटेंड करके, तो उस समय क्या ज्ञान सरोवर बंद रहा था और सारी दादियाँ, चारों पांचों दादियाँ मधुबन में थी। तो हर रोज जो टोली किचन में जो सेवा कर रहा, तो हर रोज एक चांस मिला कि सभी दादियों से रोज मुलाकात होती थी लगभग, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे लोगों की रिएक्शंस के ऊपर, जो लोग रिएक्शंस करते हैं उसको कैसे हम रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से कितना संभाल लेने की जो शक्ति है, ताकत है, वो दादियों के रूप में देखी। और अभी तो शायद समर्पित होते तो पहले सोच के आते हैं कि मुझे समर्पित होना है, सेवा में रहना है, लेकिन उस समय तो केवल सेवा करना होता था। और जब हुआ कि नहीं अभी मधुबन में रहना है, उसके बाद दादी, बड़ी दादी ने पर्सनली इंटरव्यू लिया, लगभग 20-25 मिनट का पर्सनली 1-to-1 सामने आमने सामने बिठा के। और उस समय दादी ने सबसे पहला सवाल तो ये पूछा कि तुम मधुबन में क्यों रहना चाहते। तो मैंने दादी को यही बात बताई कि दादी मैं ऐसे ढूंढ रहा था, मुझे लगा कि ये सबसे अच्छी जगह है। बोला बस केवल इसके लिए तुम मधुबन में रहना चाहते हैं, तो ये तो कहीं भी कर सकता है, तुम कहीं भी रह सकता है। तो मैंने बोला दादी मैंने तो इतना ही सोचा है अभी। तो दादी ने उस समय कहा कि नहीं, मधुबन में अगर रहने का संकल्प है तो यहाँ केवल सेवा के लिए या खुद का ही स्थिति बनाने के लिए रहेंगे तो कहीं भी रह सकते, लेकिन यह है लाइट हाउस, यहां रह के अगर आप अपनी लाइट को दूसरों के लिए, आप हमजींस बनाने के लिए अगर स्प्रेड कर पाओ, वो लक्ष्य लेकर रहो, तो मधुबन में रहो, नहीं तो फिर पढ़ाई करो। तो उस समय वो चीज बहुत लगी कि नहीं देखो एक, और उसके जस्ट पहले एक क्लास कह रहा दादी ने, तो दादी ने यही कहा था कि कितने सारे करोड़ों आत्माएं हैं, करोड़ों में से बहुत थोड़ी आत्माएं ज्ञान में चलती है, उसमें से भी बहुत थोड़ी आत्माएं जो पांडव भवन में रहती है। और उसके बाद दादी ने बोला पांडव भवन में वो आत्माएं आती है जिनको भगवान बुलाता है, बाबा बुलाते हैं। तो वो सुना था, उसके बारे में दादी ने ये कहा, तो एकदम बुद्धि में लगा कि नहीं, मैं यहाँ जो हूँ मेरी अपनी मर्जी से नहीं हूँ, बाबा की मर्जी है, बाबा को मेरे से कुछ करवाना होगा, इसलिए उसने यहाँ तक लाया। तो उसी एक लक्ष्य से मधुबन में रहे, और वो लक्ष्य होने के कारण और जो दादियों को जीवन देखा उसके कारण एक खुद को एक शुरुआत से ही एक बना लिया कि नहीं, इतने बड़े संगठन में रहना है तो सबसे मुख्य बात तो यह है कि मेरे कारण संगठन डिस्टर्ब ना हो, मेरे किसी भी कर्म के कारण, और दूसरा संगठन में जो संगठन का प्रभाव होता है, जो निगेटिव इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, जैसे थोड़ा सा सुस्ती आती है या थोड़ा सा इस तरह से होता है कि आपस में व्यर्थ की बातें आदान प्रदान होती है, उसका प्रभाव मेरे जीवन में ना पड़े। तो ये दो चीज़ों का शुरू से ख्याल रखा और सोचा कि बाबा ने तो यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन जो बाबा ने दिया है, जो दादियों ने दिया है, उसे सस्टेन करना, उसको बना के रखना मेरा पुरुषार्थ है। तो उस पुरुषार्थ पे अभी तक वर्क कर रहा हूँ।
आप मधुबन की बेहद की स्टेज पर हैं, कुछ एक आत्माएं होती हैं जो गुप्त में रहती हैं, कुछ एक प्रत्यक्ष में हैं, तो आप हमेशा अनेक प्रकार की सेवाओं में दिखाई देते हैं, और विशेषकर आप यूथ विंग के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और क्रिएटिव माइंड भी हैं, तो आप यूथ के लिए क्या सोचते हैं और उनके लिए क्या प्लानिंग है, उनके लिए कैसे प्रेरणा स्रोत बनते हैं, कैसे उनको अपना बनाने की कला आपके अंदर विकसित होती है?
खैर, अपना तो बाबा ही बनाता है। बाकी जब मैं पढ़ाई पढ़ रहा था कॉलेज में खास करके, तो उस समय मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आज की जो यंग जनरेशन है, अभी तो और भी ज़्यादा ये जो सोशल साइट्स वगैरह आ गई तो अलग ही हो गया है, लेकिन जो यंग जनरेशन है उसमें दो चीज़ें खास करके नोटिस किया कि एक तो लगभग 70-80% ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उनके सामने कोई टारगेट ही नहीं होता है, कोई लक्ष्य ही नहीं होता है, केवल ठीक है दाखिला हो गया इसलिए पूरा करना है, पढ़ लेते हैं उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और दूसरे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा एक किसी को कॉपी करके अपने लिए गोल सेट कर लेते और फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते इसलिए वो डिप्रेस हो जाते हैं, फिर शुरुआत में तो सोचते हैं कि इतना बड़ा बनूंगा, उसके बाद में अगर आज देखेंगे 10 साल के बाद तो कहीं ना कहीं गांव में पड़ा रहता है या कुछ ऐसे बेकार में होता है, क्योंकि उसका दिल टूट जाता है, डिप्रेस हो जाते हैं, वो छोड़ देता है, आशा छोड़ देता है। तो उसी समय ऐसे लग रहा था कि इनके लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो सर्कल होता है ना उसका प्रभाव बहुत निगेटिव होता है, एक्चुअली निगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है यंग माइंड को, और उस समय अगर उनको सही चीज़ कुछ हम कर पाए लेकिन उनके तरीके से, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि जाए उनको बुलावे सेंटर पे आओ योग करो या अच्छा लगेगा आपको मन शांत होगा, लेकिन मन शांत नहीं हो पाता उनका डर लगता है उनको नहीं ऐसे जाएंगे तो और थोड़ा सा अंदर से कुछ बाहर आ जाएगा या मेरी जो ड्यूअल पर्सनैलिटी रखे वो सामने पता चल जाएगी, इसलिए वो लोग शायद टालते हैं। तो उसी समय से एक संकल्प था कि इनके लिए कुछ ऐसे करना चाहिए, और जब मधुबन में सेवाएं कर रहे थे तो शुरुआत में तो टोली की सेवा थी और काफ़ी हार्डवर्क भी था, कभी सोचा नहीं था कि इतना हार्डवर्क। आपको सच बताए हमने घर में कभी एक चाय भी नहीं बनाई थी, लेकिन मधुबन में आने के बाद फिर टोली किचन में सेवा मिली और वहाँ धीरे धीरे सब कुछ सीखते गए। तो जो शुरुआत में हार्डवर्क की भी आदत नहीं थी, लेकिन यहाँ हार्डवर्क की भी एक आदत अच्छी पड़ी, अच्छा मज़ा आता था उस समय, और इसी तरह से चलते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ जीवन में घटित होती है, चाहे अच्छी है बुरी, वो चीज़ हमारे जीवन में अगर हम बाबा पे नीचे है तो एक टर्निंग पॉइंट बन जाती है। तो उसी तरह से सेवा करते करते, सेवा में तो बिजी थे, लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ ऐसे एक हेल्थ प्रॉब्लम भी आ गया, या कुछ ऐसे आ गया हेल्थ के कारण कि ऐसे लगा कि शायद अभी इतना सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो मन भी थोड़ा सा ये भारी हो गया। अभी समय है कि नहीं तो कल सुना जैसे, वो एक इंसिडेंट मैं सुनाता हूँ जो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट मधुबन का। मुझे अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रॉब्लम हुआ था, सर को पता है। तो उसके कारण बहुत ऐसे नहीं, दिन में 15-16 बार स्नान करना पड़ता था, तो काफ़ी ऐसे वीकनेस भी आ गई, तो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। तो सोचा क्या करे अभी, कैसे रहे। और फिर संगठन होता है, संगठन में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो बहुत सारी बातें हुई। फिर किसी ने कहा कि नहीं, तुमको तो अभी तुम्हारे से नहीं होता है तो घर चले जाना चाहिए। तो जैसे किसी ने ऐसे कहा, हल्के रूप में ही कहा, लेकिन एकदम से मन में हो गया कि अरे इतनी सेवा की मैं, यज्ञ की सेवा की, सब कुछ भूल के, लेकिन ऐसे हो गया, तो एकदम से ऐसे हो रहा है। तो अकेले जाके, जो बाहर छत है अपना, वहाँ जाके जैसे नहीं एक रोना आ गया, और बाबा से बोलने लगा कि बाबा मैं आपको ही जीवन दिया है, और एक क्या मतलब के क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप इमेजिन नहीं करोगे, अचानक से दादी रतन मोहिनी जी को अचानक से विचार आया, ना उनको किसी ने बोला ना किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी। तो दादी को अचानक से विचार आया, दादी ने बोला कि नहीं, जीतू को बुला के लो। तो एक भाई आया बुलाने के लिए, जो पहरे वाला, कि दादी कमरे में बुला रही है। तो मैं गया दादी के पास, एकदम से चेहरा सा ऐसे था, और दादी के पास गया। और दादी तो उस समय ना बहुत ऐसे एक्चुअली डिसिप्लिन में रहती थी, भाइयों के पास है ना बिल्कुल दादी ऐसे डिस्टेंस बना के रखेंगे, बहुत अच्छी तरह से ऐसे रहेंगे। लेकिन जैसे वहाँ दादी के कमरे में गया, दादी ने एकदम से ऐसे नज़दीक ले लिया और मेरे सिर के ऊपर हाथ घुमाने लग गई। तो मुझे एकदम से आ गया कि ऐसे। फिर दादी बोलती है कि क्यों मुरझाया हुआ है। मैं बोला नहीं दादी, बस ऐसे ही कुछ ऐसे लग रहा है कि बस अभी सेवा नहीं कर सकते ऐसे। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। बोले बाबा को आपसे बहुत कुछ करवाना है, और बहुतों का जीवन बनाने के भी निमित्त बनना है। तो इस तरह से एक प्यार मिला ना, तो एक अलग एनर्जी आ गई। फिर थोड़ा सा वहां से शांत होके चला गया। उसके कुछ दिन के बाद अचानक से दादी ने बुलाया। दादी बोलती है कि ऐसे है, आपको यूथ विंग की मीटिंग में चलना है। मैंने बोला दादी मैं क्या करूंगा यूथ विंग के, क्योंकि केवल स्थूल सेवा कर रहे थे टोली बनाने की। दादी बोली नहीं नहीं, दादी को पता है ना कि तुम यूथ विंग की मीटिंग में चलना है और वहां तुम्हारा काम है। दादी जबरदस्ती पकड़ के अहमदाबाद में मीटिंग में लेके गए। फिर वहां फिर चेंज हो गया, फिर अपने बुद्धि को भी एक क्रिएटिविटी मिल गई। धीरे 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 बहुत कुछ सीखना हो गया, अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट हो गई। और आज वो चीज़, वो जो बीमारी की चीज़ जो शायद मेरा जीवन डिस्ट्रॉय हो सकता था, उस इंसिडेंट के कारण मेरा जीवन एक अलग घड़ गया, मतलब जीवन बन गया और एक नया जीवन बन गया। और ये जो भेद की सेवा का पार्ट उस समय से शुरू हुआ, तब तक तो लगभग यज्ञ सेवा थी और खुद का ध्यान रखने का होता था।
आपके भाई भी है तो वो तो उधर रहते हैं माताजी पिताजी के साथ, तो ये ऐसा कोई डिसीजन हुआ था कि एक एक बेटा मधुबन में रहेगा और एक बेटा माँ बाप की सेवा करेगा, या फिर ये अपने आप, इसके बारे में कुछ बताइए।
एक्चुअली ये भी बहुत एक मजेदार बात है। जैसे आपको कहा ना, मैं बहुत शुरुआत में मधुबन में आया था, तो पहली बार आया जब 8-9 साल का था, तो मम्मी के साथ आया। और जैसे आतम भाई को मिलने गए हम लोग किचन में, ऐसे ही एकदम हल्के रूप में, मम्मी थोड़ा देखती थी कि भाई साहब ओम शांति कर लेते हैं। तो गए, जैसे हम दरवाजे से एंटर कर रहे थे, तो एंटर करते ही आतम भाई मम्मी को कहते हैं, अच्छा तुम्हारे पास दो है ना, एक मेरे को दे दे एक तुम रख ले, एक मेरे को दे दे। बाद में 10-12 साल के बाद, तो हल्के रूप में मजाक में हो गई, लेकिन 10-12 साल के बाद वही बात सच हुई कि मैं मधुबन में आ गया और ड्रामानुसार उसी डिपार्टमेंट में आ गया, उनके पास ही है और भाई वहाँ है। और दूसरा मेन बात, जब समर्पित होने की बात आई ना, तो उस समय दादी जो बैठे थे, दादी हर चीज पूछते थे, तो उस समय दादी ने सबसे पहले पूछा, अच्छा मम्मी पापा है तो उनको संभाल कौन करेगा। तो मैंने कहा कि दादी है, छोटा भाई है। बोले क्या करता है? तो उस समय तो पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टरी की, डॉक्टरी बन रहा था, डॉक्टर बन रहा है। अच्छा अच्छा, तो पहले मम्मी आएगी तो मेरे से बात कराना, तो अगर उनके तरफ से छुट्टी है तो मैं आगे बात करती हूँ। तो उसी समय नेचुरली हो गया। और वैसे भी वो मम्मी पापा के साथ है, लेकिन वो भी समर्पण बुद्धि है, वो उनको संभालता है, मैं मधुबन में संभालता हूँ।
आप टोली किचन डिपार्टमेंट में जब आए तो वहाँ कोई ऐसा कोई विघ्न आया कि डिपार्टमेंटल आत्माओं से, या ऐसी कोई परिस्थिति कि जिसने आपको एकदम अंदर से हिला दिया, और फिर वो हिलाना ही एक फाउंडेशन हो गया आगे की आपकी सेवाओं के लिए, ऐसी कोई बात डिपार्टमेंट की?
वैसे तो संगठन में होता ही है ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें। एक तो ये चीज़ बताई जो बीमारी के कारण हुआ, लेकिन बीमारी से रिलेटेड फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि संगठन है तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी भी जब तक ब्राह्मण जीवन है तब तक तो चीज़ें आती ही रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हम उसको कैसे रिएक्ट करते उस पे ऊपर डिपेंड है। शुरुआत से ही एक चीज जो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि अगर आप कुछ अच्छी चीज करने जाओ, बुरी चीज करेगा तो आपको शायद कोई नहीं टोकेगा, लेकिन अच्छी चीज करने जाओ तो सबसे पहले तो लोग आपका विरोध करेंगे, नहीं पहले हंसेंगे फिर विरोध करेंगे, बाद में एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो चीज शुरू से थी। और यहाँ एक्चुअली संगठन बहुत बड़ा है, और संगठन में हर एक के अपने अलग अलग संस्कार होते हैं, अलग अलग स्वभाव होते हैं, उनके जो स्थिति की स्टेज है वो भी अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप एक एक को देखने जाओगे कि इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया, इसने मेरे लिए ऐसे क्यों किया, तो शायद हम रह नहीं पाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छी एक युक्ति बताई है कि हर एक में कम से कम एक चीज़ तो ऐसी है जिसके कारण वो इस यज्ञ में है, और वही चीज़ ढूंढने का प्रयास करते हैं कि कौन सी चीज़ है।
अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन, जब आप बाबा से मिले या पहली बार मिले तो आपका वो कैसा अनुभव रहा? कोई आपको साक्षात्कार हुआ बाबा को मिलने से पहले या फिर बाद में? और मतलब वो जो फर्स्ट मिलन था आपका, वो किस टाइप का था और कौन से ईयर में हुआ?
हम छोटेपन से बहुत बार दीदी को कहा कि हमें बाबा से मिलना है, लेकिन दीदी हमेशा कहती थी कि नहीं, तुम बहुत छोटा है तो अभी नहीं, जब बड़ा हो जाएगा तब मिलना। इसलिए 83 से मधुबन में तो आ रहे थे, लेकिन बाबा से मिले 89 में पहली बार। और वो भी एक अलग, क्योंकि भगवान है, सर्वोच्च शक्ति है, उनसे फर्स्ट टाइम मिलना तो हर किसी का अपना एक अलग थ्रिल होता ही है। ओम शांति भवन में, ओम शांति भवन में मिले थे। उसके पहले नहीं, 89 में मिले, 89 में ओम शांति भवन में मिले, तो हमारा परिवार है ना, चारों लोग, मम्मी पापा और दोनों भाई, एकदम बाबा के सामने बैठे थे। तो बाबा ने सबसे पर्सनल मुलाकात तो की, लेकिन हमारे खास परिवार को के लिए कहा कि ये एक बल एक भरोसे वाला परिवार है। और सच में मैंने नोटिस किया कि बाबा के जो वरदान होते हैं ना, तो वरदान ऐसे होते हैं कि बाबा तो उस आत्माओं को तो जज तो कर ही लेते, देखते ही है, लेकिन उनके लाइफ में आगे भी वो वरदान बहुत उनको गाइड करने वाले होते हैं, या उसके वरदान का फल मिलने वाला होता है, तभी भगवान बोलता है, क्योंकि भगवान जो भी बोलेगा वो परम सत्य ही होता है। और वो सच में हमने देखा कि एक बल एक भरोसे का कितनी सारी चीज़ें आई गई, इवन लौकिक में भी, यहाँ आने से पहले भी, लेकिन जब भगवान पे भरोसा रखते हैं ना, सब कुछ सहज हो जाता है, सब कुछ सहज हो जाता है। एक व्यक्ति थे जैसे कहते हैं ना कि अच्छा बनने जाओ तो बहुत सारे ईर्ष्या वगैरह शुरू हो जाते हैं, तो मधुबन में आने से पहले भी एक परिवार था, एक व्यक्ति था जो बहुत ईर्ष्या करते थे कि इन परिवार के साथ ही कैसे सारी बहनें अच्छी रहती है, इनको ही सब लोग क्यों हर सेवा में चांस देते हैं, इनको ही सब कुछ क्यों मिलता है, इनको स्नेह क्यों मिलता है, करी ईर्ष्या वगैरह होती थी। तो जब मधुबन में आया तो शुरुआत का पहला पुरुषार्थ मेरा वही था कि उस आत्मा के प्रति मैंने खास योग के प्रयोग किए बाबा की झोपड़ी में उस परिवार के प्रति। तो आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे मैंने 20 दिन पूरा हुआ तो 20 दिन के बाद जब मैं शांति या ज्ञान सरोवर बन रहा था उस समय, तो उस समय ज्ञान सरोवर से आ रहा था अपने पांडव भवन के गेट के पास, तो अचानक देखा कि वही जो माता और भाई जो ईर्ष्या करते थे वही सामने से आ रहे, और अपने गेट के सामने ही अचानक से आके अरे जीतू जीतू इधर आओ तुमसे बात करने का। तो मैं गया तो सबसे मिलते ही थे, अच्छे ही मिलते थे भले कैसे भी हो, बहुत शुभ भावना से कि गए। जैसे गया तो जो माता जी थे तो लिटरली उनके आंखों में पानी आ गया, और उन्होंने उस समय अपने पांडवन के गेट के सामने ही कि कहा कि जीतू तू बहुत अच्छा है, तुम्हारा परिवार भी तुम्हारी मम्मी पापा बहुत अच्छे है, और अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमारा हमको दिल से माफ कर दो, सॉरी कह दो। ना मैंने कभी किनसे उनसे किसी प्रकार से बात की थी ना कुछ की थी। तो एक चीज मैंने देखा कि चाहे कितना भी कैसे भी हो भगवान पे नीचे है और हमारी शुभ भावना है तो हर चीज अच्छी हो जाती है। ठीक है, थैंक यू।
तो देखा कि शुभ भावनाओं का बल कितना शक्तिशाली होता है। अगर आपको भी योग का प्रयोग करवाना हो तो जीतू भाई से संपर्क कर सकते हैं और ये रूहानी सफर आगे भी जारी रहेगा। आज का ये पहली कड़ी यहीं इसको हम विराम देते हैं, कल फिर से दूसरा पार्ट, उसमें हम बहुत सारी बातों से अवगत होंगे। जीतू भाई से हमको लाभान्वित करेंगे। ओम शांति।
थैंक यू। ओम शांति।
हंसते गाते जहां से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहां से गुजर दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहां कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।